ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंध श्लोक संख्या अध्याय 19, श्लोक संख्या 221 और इस अध्याय का नाम है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। तो पहले हम श्लोक संख्या 20 पढ़कर उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर 21 को हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 20, न पुमान मा प्रवज भूयो याचतुर्हति तस्मात् वित करिम भूमि वटो काम प्रतिष्ठन। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतः चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो सके। ईश्वर संख्या 21, श्री भगवान वाच यावतः यावन्तः विषयाः प्रेष्ठाः तिरोक्यामा अजित इंद्रियं न शुक्नुवन्ति। इसमें शुक्ल का उसमें सर लिखा ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा यावन्तो विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक अजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा यावन्तः यथासंभव विषयाः इंद्रिय भोग के विषय प्रेष्ठाः हर एक के लिए सुहावना त्रिलोक्यामा तीनों लोकों में अजित इंद्रियम जिसकी इंद्रिया बस में न हो न शुक्नुवन्ति असमर्थ हैं ते वे सर्वे सभी मिलकर प्रतिपूरयितुं संतुष्ट करने के लिए नृपा। हे राजा, अनुवाद होता है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की। श्री भगवान ने कहा है राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता। तात्पर्य, भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें योग या अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सम्मिलित है। इस प्रकार से इंद्रियों को बस में किया जा सकता है। इंद्रियों को बस में करने का उद्देश्य जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है, जैसा कि ऋषभदेव जी ने कहा है, नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मम्। यदि इंद्र पीते आपनोति न सब मन्ने यत आत्मपयम असमपित कृष्ण आस्ते है। जब कोई मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो भौतिक जीवन के पीछे उन्मत्त हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है जो क्षणिक होते भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयोग नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कारण में संलग्न हो जिनसे लगातार भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। इस तरह से देख अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पापों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न करते हैं ऐसे कार्य उत्तम नहीं है कि उससे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दम स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है और पुनः शरीर प्राप्त होने पर से संसार में फिर से कष्ट भोगना पड़ता है। अतः भौतिक या ब्राह्मण संस्कृति सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृत की शिक्षा देने के लिए बाणाश्रम धर्म की संस्कृति की गई है। बाणाश्रम धर्म अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ पान प्रस्था संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम वस्तुओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देता है। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामदेव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि जो चाहे सो माप रहे। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। बलि ने उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों न प्राप्त हो रहे। अतः मानव समाज में ब्राह्मण क्षेत्र संस्कृत का पालन होना चाहिए और लोगों को अपने से संतुष्ट रहने की शिक्षा देनी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट दुखी है। इसीलिए कृषि भवन आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है जिससे सुखी बनने और न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करके आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाने की विधि ज्ञात हो सके। ओम अज्ञान विमुक्तिर्ध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गुरुभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप सबको मालूम है एक प्रसंग क्या चल रहा है। भगवान कृष्ण वामन का अवतार लेकर वामदेव का अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं और महाराजा बलि के पास जा करके पहले थे उनके पूरी परंपरा का गुणगान करते हैं क्योंकि जब कोई किसी को लेना होता है तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे हमारे भक्त लोग जब किसी दान लेने जाते हैं थोड़ा अच्छी बात बोलते हैं राइट बोलते नहीं बोलते कि जब लेना है तो अच्छा बोले। ये वास्तव में हमको सीखना चाहिए। अगर किसी से कुछ लेना है तो दादागिरी दिखा के नहीं ले सकते। लेकिन प्रेम से है ना आप कुछ भी ले सकते। आदमी अपने आप को भी पराजित कर देता है अगर आप प्रेम से मांगे तो है। तो मांगना भी एक कला है, कैसे मांगना चाहिए, किससे क्या मांगना चाहिए, कितना मांगना चाहिए, भगवान को शिक्षा दे, इससे में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि भगवान बलि महाराज कितने महान राजा, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं उनके पास, लेकिन जब भगवान उनके पास जाते हैं मांगने के लिए तो मांगने से पहले उनके कुछ प्रयोजनों की चर्चा करते हैं कि आपके पिता विरोचन बहुत बड़े दानवीर थे, इतने बड़े दानवीर थे कि एक बार सारे देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास मांगने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, सर्वस्व दे दिया, जो मांगा दे दिया, और देते कि छल कपट करके आ रहा है। जब भगवान खुद एक भगवान है, एक नन्ना सा बालक बनकर के आए, तो भगवान कह रहे हैं कि जब देवता लोग ब्राह्मण का वेश धारण करके आए कि वहां से ब्राह्मण का वेश धर के आए, लेकिन भगवान आगाह कर बता रहे कि विरोचन आपके पिताजी वे भी दान दिया करते थे, ब्राह्मण का वेश धारण किए देवताओं का बहुत बड़े दान करते, प्रहलाद महाराज भी बड़े बड़े दान करते, अर्थात आप भी कम से कम दानवीर तो आए। तो चूंकि दान लेना है भगवान से, भगवान ने कहा प्रहलाद महाराज के पोते पोते लगते थे ना, ना? ऐसे तो बलि महाराज ने कहा कि जो कुछ चाहिए हम सबको दे सकते हैं। भगवान ने कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ में तीन पग जमीन चाहिए। बलि महाराज को अच्छा नहीं लगा, जैसे आप टाटा बिरला कह जाएंगे और कहो मुझे 100 रुपये दीजिए तो उनकी बड़ी बेइज्जती होगी। जब बिरला जी के पास जा रहे, टाटा जी के पास गए और 100 रुपये मांग रहे हैं, ये तो उनका नौकर दे देगा। जब बड़े लोग होते हैं 1000 2000 5000 अपने टैबलों पर रख के रखते हैं कि तुम बार बार मत मांगना तुम न सके, राइट, ऐसा होता है। तो मांगना से बोली महाराज कि नन्हा सवाल के एक ब्राह्मण आया हुआ है और हमारी बेइज्जती कर रहा है, कहता से तीन पक्ष मुझे जब मैं बहुत ज्यादा दे सकता हूँ। तो मांगना भी एक कला है, आप जैसा व्यक्ति देखिए वैसा मांग रखिए। हमारे भक्त लोग इसमें एक्सपर्ट, इसे जब फार्म बनाते हैं तो 1 करोड़ का बनाते हैं, 10 लाख का बनाते हैं, 5 लाख का, जैसा देखते हैं वैसा फार्म दिखाते हैं, करते हैं ना, एक टेक्निक तो हम भी अपनाते हैं। जैसे गीता की होता है जो बड़े पैकेज का अलग होता है कि हम जानते हैं कि आदमी इतना दे सकते, इससे कम अगर मांगे तो उसकी बेइज्जती करने वाली बात है। तो एक टेक्निक हम लोग कहाँ सीखे, भगवान खुद ही सिखाया हमसे कैसे मांगना चाहिए। तो मांगना भी कला है। तो भगवान ने कहा कि मैं तीन पग जमीन चाहिए, कहते हैं मैं तो तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूं क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं। जब पूरे ब्रह्मांड के तीनों विभाग का स्वामी हो, उसके तीन पग जमीन और पग भी छोटे छोटे, फिर लंबा चौड़ा पग होता, पैर होता, चलो पांव होता, तो मान सकते कि नन्ना एक छोटा सा ब्राह्मण छोटा सा पग है, तीन पग जमीन चाहिए। तो बेइज्जती की बात है, तो वही बलि महाराज अच्छा नहीं, तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है कि तुम केवल तीन पग भूमि मांग रहे हो, अतः तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। क्योंकि बलि महाराज थोड़ी पता था कि कौन मांग रहा है। उसने सोचा कि इतना सा बालक है, ब्राह्मण बालक को मांग रहा है। खे बालक जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उससे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। मित्र, अतः चाहो तो तुम उससे उतनी भूल मांग सकते हो जितने से तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो सके। अब भगवान क्या करते हैं ये समझने के बाद आज का जो श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको समझना चाहिए, इसको अपने जीवन उतारना चाहिए कि हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्र कहता है कि संतोषम परम सुखम। परम सुख क्या है? संतोष में है, लेकिन संतोष ही नहीं। सच है कि नहीं सच? हर व्यक्ति असंतुष्ट है। असंतुष्ट का कारण क्या है? क्योंकि इंद्रियां जो है नियंत्रण में नहीं है। तो ही भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है उसे तीनों लोगों की संपत्ति दे दी जाए तब भी वो क्या रहेगा? असंतुष्ट। अब इस संसार में, भौतिक संसार में, तो आप खुद देख रहे, प्रत्यक्ष देख रहे, जिसके पास एक रुपए है वो दो रुपए चाहता है, जिसके पास दो आ गया वो चार रुपए पीछे भुगता है, जिसके पास 10 लाख है वो 20 लाख चाहता है, जिसके पास 1 करोड़ है 2 करोड़ चाहता है, जो अरबपति है वो खरबपति बनना चाहता है। माने कोई अंत नहीं है, संतोष की कोई भावना नहीं। एक गाड़ी है चार गाड़ी के पीछे तो भागता है, असंतुष्ट, क्योंकि उसे अपने इंद्रियों में कोई कंट्रोल नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत वो हमारा है जो जीवों को आत्मसाक्षात के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार नहीं है सब। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से इस बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, इसके आप लोग समझिए। हम बहुत सरल ढंग से आपको समझाएंगे इसी बात को जो प्रभुपाद जी ने। आप बताइए कि हम सब इन संसार में क्यों आए? मालूम है किस लिए? इस संसार में जितने भी जीव आए हैं वो किसके लिए आते हैं? भोगने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं बताए? बोले किसके लिए आते हैं? भोगने के लिए। क्योंकि भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है भगवत धाम, जबकि एकमात्र भोक्ता कौन है? परम भोक्ता कृष्ण। जब जीवात्मा भोगने की इच्छा उसके हृदय में पलवित हो जाती है, अंकुरित हो जाती है, तो भगवान इस भौतिक संसार में भोगने के लिए जीव को क्या कर देते हैं कि डाल देते हैं। तुम भोगना चाहता है भौतिक संसार में जा करके भोगो। अब क्या भोगो? ये दुखाले है, दुखाले अशास्त्र। ये संसार क्या है? दुखों का घर है, टेम्पररी है। यहां हम आए ही तो भोगने के लिए, लेकिन तलाशते क्या है? ये सच्चाई है कि हम कितने अज्ञान में हैं कि दुख के घर में रह करके अशुभ की कामना करते हैं, इससे ज्यादा पुरुष हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जिस घर में रहेंगे वही चीज मिलेगी। जैसे दुग्धालय, दुग्धालय में दूध ही मिलेगा, वस्त्रालय, वस्त्रालय में वस्त्र ही मिलेगा, जूतालय, जूतालय में जूता ही मिलेगा, है ना, मदिरालय, मदिरा, तो दुखारण क्या मिले?
दुख
भाई जिस चीज का घर है, आले माने घर, जिस घर का घर बना हुआ है उसमें वही मिलेगा। जब दुखारे इस संसार को भगवान कर दिया है, इस संसार का दुखारे और दुखारे में रह करके सुख के लिए तुलना ये मूर्खता ही नहीं तो और क्या है। इसीलिए इंसान यहाँ पे आ करके दुख झेलता है, असंतुष्ट रहता है। संतुष्ट वही सचिन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहता है, परेशान, कुछ अपने परिवार के लोगों से परेशान है, कुछ आस पास के लोगों से परेशान है, कुछ रिश्तेदारों से परेशान है, माने किसी न किसी तरह से परेशानी क्या होती है, लगी रहती नहीं रहती। एक टेंशन दूर नहीं है दूसरा टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो इस संसार में रहना तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर माने कि जब आप इस संसार दुख रूपी सागर में गिर गए हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए क्यों आ गए, किसने हमको भेजा। इसे टाइम वेस्ट करना अच्छा है कि संसार सागर से कैसे निकले इसके बारे में सोचा जाए। और इसके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई सोचता है कि जब इस दुखाले में आ गए हैं तो इस दुख के घर से कैसे वापस जाए इसके बारे में लोग सोचते हैं। वो आ गए यहीं पे फिर माया में फंस करके और इसी को भोग करना चाहते हैं। तो जीव किस तरह से फंस जाता है एक भ्रम जाल में, क्या हुआ हर इंसान फंसा हुआ है, उससे निजात देना बहुत जरूरी। तो भोगने के लिए शरीर चाहिए है ना, और हम क्या है, भगवत गीता का दूसरा अध्याय यहां बहुत काम आता है, हम आत्मा हैं और आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। ऐसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, अर्थात हमारे शरीर में जितनी हरकत है चेतना है किसकी वजह से है, आत्मा के चलते। आत्मा जैसे शरीर को छोड़ देती है तो आदमी उसको क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं, मर गया, मृत्यु। अर्थात शरीर के बिना, आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। एक कीमत किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। लेकिन शरीर के बिना आत्मा का ही कोई पहचान नहीं है, क्योंकि आत्मा की दृश्य है जिसको आप देख ही नहीं सकते, और जिसको आप देख ही नहीं सकते उसका क्या वजूद है, समझे ना। तो आत्मा और शरीर एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों साथ होते हैं तब इंसान जीव एक्टिव रहता है। असल में क्या बताना चाहता हूं कि दोनों जरूरी है। कथन है, कहावत है, एक कथन है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, राइट, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जन्नते खुशियां इसी में है कि हम भी हो तुम भी हो। जब आत्मा और शरीर एक साथ रहते हैं तब आपका अस्तित्व है, और दोनों में एक नहीं है, शरीर नहीं है आत्मा है, सब भूत दिखाई नहीं देता, आत्मा तो देख ही नहीं सकते, दूरबीन से नहीं देख सकते। तो आपका कोई अगर शरीर नहीं होते तो यहां किसको आप प्रवचन देते, कौन बोलते हैं भाई। बोलने के लिए तो शरीर चाहिए, खाने के लिए शरीर चाहिए, मुंह चाहिए ना। इसीलिए आत्मा इस संसार में जब आती है तो अकेले में अपने साथ किसको लेके आती है, शरीर। एक बार आप समझिए, इसलिए हर इंसान जब इस धरती पर आता है तो शरीर को ले तो आता ही है किसके लिए, भोगने के लिए। तो बिना शरीर के आप कैसे भोगेंगे भाई, सुनना है तो कान चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर खाना है टेस्ट कैसा है, जीवा जीने से, इसलिए हम पूरा शरीर को लेकर क्या करते हैं, आते हैं सारी इंद्रियां जो इंजॉय करती है वो सारी इंद्रियों को लेकर के आते हैं, और फिर उसी इंद्रियों को संतुष्ट करने में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। सच है यही होना। अरे शरीर ये आत्मा इतना चालाक है, गीता भगवान कहते हैं जिस प्रकार से आदमी फटा पुराना वस्त्र छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी है, जब ये शरीर भोगने के लायक नहीं हो जाते, अच्छा वृद्ध हो जाए कि जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, राइट, तब आत्मा क्या करती है कि वो उसका स्वभाव क्या है, इंजॉय करने का है, जब देखता है इस शरीर यूजलेस हो गई है, उस शरीर को छोड़ करके नए शरीर प्रवेश कर जाती है। समझिए मैं क्या सुन, अर्थात हम आत्मा है लेकिन हम ही शरीर को लेके आते हैं, लेकिन हम इतने सेल्फिश हैं कि जिस शरीर को हम लेके आते हैं उसको यही छोड़ करके चले जाते हैं। देखिए जिस शरीर को हम लेके आते हैं और उस शरीर के माध्यम से हम इंजॉय करते हैं, राइट, लेकिन जब वो शरीर इंजॉय के लायक नहीं रहती उसको हम छोड़ करके चले जाते हैं। यूज एंड थ्रो फिलॉसफी हम खुद अपनाते हैं। हम आत्मा हैं, हम खुद हैं। समझा रहा हूं कैसे, ये सच्चाई, इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है कि हम इस संसार में आए हैं आनंद लेने के लिए, और हम उसी समझ रखते हैं जिससे हमको आनंद मिलता है, नहीं मिलेगा हम उसे मुंह मोड़ लेते हैं। कि जो व्यक्ति अपने शरीर का साथ नहीं है वो दुनिया का क्या साथ देगा, इसीलिए हर आत्मा इंडिविजुअल है, उसे किसी से प्रेम वास्तविक नहीं है। शादी करने के बावजूद भी तलाक होता है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, क्यों, कि हर आत्मा क्या है, बेटी जब पत्नी मिलाने से शादी कर देने से हमारी फ्रीक्वेंसी एक नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम है इंडिविजुअल, एक तो साथ से जाता है हम न समझे हमारा उठता, इससे शादी होने के बावजूद परिवार से बसने के बावजूद भी फ्रीक्वेंसी एक नहीं हो पाती, कि न कभी हम एक थे न मरने के बाद एक होंगे न वर्तमान में भी एक रहेंगे भी नहीं, इसलिए कोई किसी का नहीं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को समझिए, कोई किसी का नहीं। आग लगती है तो सबको अपनी जान प्यारी होती है, इन्हें कि सबको उठा के लेके भागता है, सच है कैसे, उसमें अपना जान दे, अरे ये तो जान की बात है, सत्य घटना, क्योंकि हम अपने प्रवचन सत्य घटना जरूर बताते हैं, जानते हैं, क्योंकि ऐसी घटना हम देखते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमृतसर मंदिर में रथ यात्रा थी, पहली बार हम रथ यात्रा में गए थे अमृतसर के, तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर थे सब लोग थे, हमारे साथ हम दो तीन भक्त थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब प्रसादम का समय, इतनी भीड़ हो गई थी कि प्रसादम हॉल के अंदर जाने के मार मार हो गई थी, आप समझे ना, उसके पहले सब लोग आए प्रभु जी, आए प्रभु जी, आए प्रभु जी, राइट, अब हम सामने खड़े हैं और खड़े, लेकिन जब प्रसाद घुसने गए तो किसी को प्रभु जी की चिंता नहीं थी, अरे हमें तो छोड़ दीजिए, लोग एक बहुत बड़े मैनेजर थे, उस ऑर्गेनाइजर की बात करूं, जो ऑर्गेनाइजर थे रथ यात्रा के, वो बेचारे उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी वाइफ भी खड़े थे, वो घुस के बच्चों को तक खाने का, हमका जो व्यक्ति अपने बच्चों को घुसा नहीं सकता, क्या ध्यान नहीं इसमें प्रसाद से अपनी पड़ी है, वो हमारा दूसरे क्या दिखे, ये सच्चाई है, जीवन सच्चाई, ये जो से तो इसलिए ये सोचे कि पूरा संसार हमारा सुचिंतक, कोई आपका सुचिंतक नहीं है, एक ही व्यक्ति सुचिंतक है जिसको हम अपनाते नहीं है वो कौन है? कृष्ण। जो हमारा सचिंतक है, भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सुरितम सर्व होता ना, जितने भी जीव प्राणी है अर्जुन, मैं सबका सचिंतक हूं, मैं चाहता हूं नाथ सेवा कर दे, नाथ मैं चाहता हूं कि हमारे ही संतान है हमारे पास रहे, लेकिन ये रहना ही नहीं चाहते, मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास आना ही नहीं चाहता, ये समस्या हमारी समस्या है। तो माया के इस बाजार में हम क्या है, फंसे गए। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि इंद्रियां बस पे होना क्या है, बहुत जरूरी है। ब्रह्म भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं आसन के बारे में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चातुर्ब्रह्मया सिस्टम। भगवान की जितनी भी व्यवस्था है ये सारी एक टेम्परेरी व्यवस्था है, ये जान लीजिए कि जब इस संसार में आ ही गए तो कैसे जीना, इसके लिए इस सब व्यवस्था की गई, लेकिन इस व्यवस्था में रह करके, इस व्यवस्था में जब आप आ गए अपने आप को, तो उसमें कैसे रहना चाहिए साधन बता दिया कि ब्रह्मचर्य जीवन कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर गया तो कैसे जीना चाहिए, सब नियम बताए गए, लेकिन कोई नियम को जानना नहीं चाहता, ये जानना बहुत है। इसीलिए किसी भी आश्रम में इंसान रह रहा है, जिस आश्रम में रह रहा है उस आश्रम में परेशान, क्यों? क्योंकि उसके अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा अच्छा परिवार था, उसके घर में एक बेटा पैदा हो गया, तो जब बेटा पैदा होता है तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, राइट, बड़ा गाजा बाजा करते हैं, गाँव में तो बड़ा होता है, अब बेटी हो जाती है तो कोई गाजा बाजा नहीं होता, ऐसे सोच लो। लेकिन वो बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो जंगल में चला गया, ब्रह्मचारी बन गया, अर्थात वो जंगल में जा करके एक कुटिया में रहना शुरू कर दिया, वो कहा कि इस संसार जो है यहाँ हम भगवान की भक्ति करें, और वहाँ चला गया जंगल में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भक्ति करने लगा, बड़ी साधना करने लगा, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम का कड़ा कड़ाई से पालन करने लगा। जब 26-27 साल का जवान हो गया, उसकी इंद्रियां जब विकसित होने लगी, तभी उसको एक बारात दिखाई दी, वो बारात जंगल से गुजर रही थी, तब घोड़े पर एक दूल्हा बैठा हुआ था सजा करके, तो जैसे दूल्हा बारात सब देखा तो उसका भी मन जो है दूल्हा बनने का हो गया कि देखो शादी करेगा, पत्नी आएगी, आनंद आएगा, क्या संसार है ना, संतान होंगे, सब मम्मी मम्मी बोलेंगे, अरे पूरा स्टोरी जो है अपने सपना बुन लिया कि कहाँ हम जंगल में आकर के ब्रह्मचारी बोल करके कर रहे हैं, आनंद ये उठा रहे हैं उसके दिमाग पे आ गए। फिर उसने क्या किया, मन बना लिया कि हम अपने गांव जाएंगे, माता पिता से मिलेंगे और शादी करेंगे। अब वो कुटिया छोड़ करके भगवान के नाम का जप करता हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे राम अपने गांव की ओर चल दिया। उसका गांव जंगल से काफी दूर था, जंगल पार करने से पहले ही अंधेरा छा गया, तो जब अंधेरा छा गया तो रुकने के लिए जगह तलाश करने, कहाँ रुकें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जब आप जाएं तो काफ़ी दूर दूर के बाद कुआं दिखाई देता है, तो एक बड़ा सा कुआं जो है, कुआं देखा उसकी जगह ऐसी थी, जगह समझते ना, गुलाई उस सर्किल में से, तो वहाँ पे वो क्या कहे कि ये जो इसकी जगत है यहीं पे सो जाता हूँ। तो उस कुएं के पास जो भेड़ चराने वाले होते, बकरी चराने वाले थे, उनको गड़ैया याद करते, तो गड़ैया भी वहीं सोता है रात को जहाँ पे कुआं होता है। तो अपने भेड़ियों को खेत पे डाल दिया, वो सब सो गए, और वो भी चार पांच जो गड़ैया थे कटवासा लेकर के, वो रस्सी लेके चलते हैं, उसमें लोटा पान बनाते रस्सी से लेकर के, है ना, वो भी सब सो रहे थे। इसको भी नींद आ गई, बेचारा कुटिया से पैदल गया हुआ था, अब इसको नींद आ गई। और चूंकि इसके दिमाग में थे स्त्री घूम रहे थे, पत्नी घूम रही थी, तो जैसे ही गहरी नींद आई तो उस जो है तुरंत उसको सपने में दूल्हा बन गया। अच्छा, सपना जब आप देखते हैं तो सीन बड़ी जल्दी जल्दी तेजी से, जैसे फिल्मों रील चलती है ऐसे सीन बदलता है, बड़े तेजी तेजी सब से चलता है। तो जो दूल्हा बन गया, बारात गई, शादी हो गया और बच्चा भी हो गया सपने में। जब बच्चा हो गया तो बच्चा रो रहा था और सो रहा है, सपने में दिख रहा है कि बच्चा रो रहा है। अब उसकी जो पत्नी थी वो आई उसके पास, कही ए जी एक बेटा बहुत परेशान कर रहा है, बहुत रो रहा है, जरा अपने पास इसको क्या करिए, लिटा लीजिए। तो सपने में ही बोला कि देखो मैं तो बहुत छोटी सी जगह में सो रहा हूँ, हमारे पास जगह कहाँ है, क्या थोड़ा सरक जाइए। जब पत्नी ने प्रेम से कहा जा सरक जाइए, तो बेटे को अपने साथ सुला लीजिए, तो सरक गया। अच्छा सरक गया तो कहाँ गिर गया, कुएं में गिर गया। अच्छा कुएं में गिर रहा है, इसे शास्त्र में कहा गया अंधकूप। नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको अंधकूप बोला है। तो जैसे ही अंधकूप में वो गिर गया है ना, बड़े जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसकी नींद खुल गई, तो न कोई बीवी न कोई बच्चा न कोई बारात, सब वो कहाँ करता, अब तो उसको मरने पर आ गए। बड़े जोर से खुले से चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, तो ये आवाज़ घड़ियों को सुनाई दिया। वो बेचारे सब आए और रस्सी डाल करके कट रस्सी पकड़ लो और खींचे। तो पूछा कहाँ जाते, कह रहे बाप रे अब तो हम गाँव को नहीं जाएंगे, भाग करके अपनी कुटिया आ जाऊंगा। क्या क्यों, कि जब सपने की नारी कुएं में गिरा सकती है, जब सपने की नारी हमें कुएं में फेंक सकती है, असली नारी हमें कहां फेंकेगी, हम नहीं शादी करेंगे। वो जाकर कितना साधु बन गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी अलग परेशानी है, जिनकी हो गई है उनकी अलग परेशानी है। अब क्या करें, अब हो गई है झेलनी पड़ेगा। लेकिन हर इंसान परेशान है, क्योंकि संसार ही ऐसा है। तो आप किसी भी पास में रहेंगे आपको परेशानियां रहेंगी नहीं, लेकिन अगर इन आसनों में रह करके इन आसनों का जो नियम बताया गया उसका पालन करेंगे और अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ देंगे, क्योंकि आनंद की वही आवाज है, वही आनंद दे सकते हैं। ऐसे संसार के लोग कभी आपको आनंद नहीं दे सकते, क्योंकि आनंद वही दे सकता है जो सदैव आनंद में रहता है। हमें क्या करना चाहिए, हम किसी भी आसन में अपना हाथ भगवान के हाथ में क्या कर देना चाहिए, पकड़ा देना चाहिए। जब आप हरिनाम को पकड़ेंगे और भगवान को अपना हाथ आगे बढ़ा देंगे, तब भगवान क्या करेंगे, आनंद की अनुभूति देंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कला सीखनी आनी चाहिए, वही तो भगवान सुनकर। आप देखिए जब भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे, जानते हैं भगवान क्या कहते, अर्जुन कछुए की भांति जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। कछुआ क्या करता है, जो चलता है बड़ा आकड़ के चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, चलेगा बड़ा आकड़ के चलेगा। लेकिन जैसे उसको खतरा दिखाई दिया उतना पूरे शरीर को क्या करता है अंदर डाल लेता है और पत्थर जैसा हो जाता है। तो दूसरा आदमी सोचता है कि हाँ कुछ नहीं पत्थर है, खतरा टल गया उसका। और जब खतरा खत्म हो जाता है फिर अकड़ के चले जाता है। अब आप खुद सोचिए कि 14 और 26 सेना के बीच में भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं और कछुआ का उदाहरण दे रहे हैं। कछुआ का उदाहरण, कछुए की भांति जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता है वो मेरे तक क्या करेगा, पहुंच पाएगा। इंद्रियों कैसे नियंत्रण करना चाहिए, कछुआ करता है। अगर कोई इंद्र तृति वाली पुरुष दिखाई दे रही तो अपने आप को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, राइट। जैसे आप मार्केट जाए गरम गरम जलेबी तल रही है पकौड़ा खाने, आजकल मोमोज का बड़ा फंक्शन चला है, जो न्यू जर्सी मोमोज खाते हैं पता नहीं कौन सा फंक्शन है, तो वहाँ पर लार टपक गया खाना शुरू कर दिया। मैं कंट्रोल करना चाहिए, हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस लाइक कछुआ, ये भगवान कहते हैं। तब भगवान तक पहुंचे, लेकिन हमसे ऐसा हो नहीं सकता। जैसे एक बार एक राजा था, उस राजा ने बोला कि कल सुबह होते ही जो व्यक्ति सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसको मैं राजा बना दूंगा। जब ये मुनादी सुना दी गई, सारी प्रजा पूरे शहर के लोग रात भर सोए नहीं, ये सोचे कि अगर हम सो गए तो राजा बनने से चूक जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है राजा के पास सबसे पहले पहुंचना चाहता था सुबह सुबह, एक आदेश था उसका, आज्ञा थी। सारा शहर जो है पूरा सब जानते हैं, और जैसे सुबह हुआ सूर्योदय से पहले ही सब राजा के दरबार पर भागे, हम पहले पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे, हम राजा, क्योंकि हर इंसान क्या बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। राजा कौन नहीं बनना चाहता, सब राजा बनना चाहते हैं, सब चाहते कि हमारे पास भी एक पैलेस हो, रहे 5 गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, जहां चाहे वहां जाए, सबकी इच्छा होती है, हर व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, कर्मों का ऐसा फल है कि बन नहीं सकते। आप सुनिए, तो वो सब गए, राजा ने क्या किया था, बहुत बड़ा केक बना रखा था, दरवाजा बंद कर रखा था, अब पूरा शहर का शहर दरवाजे के सामने क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तब राजा ने, जब पूरा शहर के लोग आ गए, तब राजा का आदेश क्या खुला, दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, जैसी हालत होती, सब राजा बन निकले, एकदम पूरा भरभरा कर अंदर प्रवेश करने। लेकिन जैसे ही अंदर लोग पहुंचे तो राजा ने क्या किया था, इंद्र तृप्ति की सारे इंद्रियों के लिए बढ़िया व्यवस्था कर रहा। तो सबसे पहले इंसान क्या करता है जानते हैं, देखता है, आंख सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने से। आसन इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रिय क्यों मानी जाती है, आंख। प्रेम की शुरुआत भी जाते किससे होती है, नेत्रों से होती है। इंसान पहले देखता है पहले, क्योंकि नेत्रों के ऐसे शब्द होते हैं जो सुनाई तो नहीं देते लेकिन महसूस करते हैं। तो प्रेम की शुरुआत मनु जी बताते, मनुष्यता बताया गया कि मनुस्मृति में बताया गया है कि प्रेम की शुरुआत किससे होती है, नेत्रों से होती है। जब आप चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो, पहले आप किसी को देखते हो, और देखने देखने से फिर क्या शुरुआत होता है, बातें शुरू हो जाती है। इस तरह से प्रेम शुरू होता है शुरुआत। तो प्रेम की शुरुआत किससे होती है, नेत्रों से। तो राजा ने भी किया था कि जैसे ही लोग प्रवेश किए, अब नेत्रों की क्या चाहिए, सुंदरता चाहिए, कि हर नेत्र सुंदर वस्त्र देना चाहता है। इसलिए इतना सुंदर रमणीय वातावरण क्रिएट कर दिया था कि जैसे ही लोग अंदर गए तो जो नेत्रों की कमजोर थी सुंदरता जिनकी कमजोरी थी उसमें क्या हो गए, फंस गए। दृश्य देखेंगे आनंद देखेंगे। और उसके बाद जो लोग उसके प्रति थे वो आगे निकल गए, तो वहां पे क्या किया था, बहुत सुंदर संगीत की व्यवस्था की। तो जो शब्द और कान के कमजोर थे वो उसमें क्या हो गए, फंस गए। उसके बाद भोजन का नंबर आ गया, तो जीवा की जो कमजोर थी, इतना प्रकार का व्यंजन सुगंधित इतना जबरदस्त आइटम सब चारों तरफ बन के रखा था, जो खाने के गुलाम थे जीवा के वो उसमें फंस गए। और उसके बाद अप्सराओं जैसी खूबसूरत सुंदरियों की व्यवस्था की थी, तो जो जेंटल से रिलेटेड कमजोरी थी है ना संभोग के वो उसमें लिप्त हो गए। अर्थात अब बेचारा राजा इंतजार कर रहा है कि कोई मेरे पास आए, कोई मेरे, अब कौन जाए राजा के पास, सब अपने इंद्रियों में फंस गए। एक मूर्ख है कि मैं राजा बनूंगा, सब इंद्रियों के गुलाब क्या हो गए, फंस गए। दोपहर हो गया, एक व्यक्ति नहीं पहुंचा। दोपहर के बाद एक व्यक्ति अकेला पहुंचा राजा के पास, और राजा ने उसको क्या बना दिया, राजा बना दिया। ये राजा कौन है, भगवान कृष्ण। वो चाहते हैं कि सब आए मेरे संतान और मेरे साथ रहें, लेकिन हम इंद्रियों के गुलाम इस संसार में क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। तब राजा के पास आप तभी पहुंचोगे जब इंद्रियों को कंट्रोल करने की कला सीखोगे। आपका एक ही लक्ष्य होगा, भगवान को प्राप्त करना है। राजा वहां पर पहुंचने के लिए पैकेट ठीक करने के लिए आपको दुनिया चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, राइट। तो जब इस तरह से मान लक्ष्य कृष्ण होंगे, तो कृष्ण के आग तक अगर कोई चीज अगर आप नहीं दिखा देती, तब आप कहां तक पहुंचेंगे, कृष्ण के पास पहुंचेंगे। इसीलिए भगवान कहा कि जो इंद्रियां हैं और अगर तृप्त करने में इंसान क्या जाए पहुंचा है, कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उसी पे हम लोग लगे हुए, पूरा संसार लगा हुआ। जब जैसे जैसे इंद्र को मार कंट्रोल होता जाएगा, हम राजा की ओर क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। लक्ष्य भगवान तक पहुंचना है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए जो इतना जो सब भगवान ने माया बाजार लगा रखा है, उससे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ये चीज। तो इसीलिए भक्ति में जो है वह भगवान समझा रहे हैं कि देखो बलि महाराज है ना, जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है, उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, एक गुलाब जामुन है, कभी कभी तो लोग गुलाब जामुन खाने का कंपटीशन करते हैं कि तुम कितना गुलाब जामुन, मैं तुमसे ज्यादा खा सकता हूँ। हम जब कॉलेज लाइन में थे तो हमारे वो गेस्ट हाउस में जो रहता था एक लड़का था, ठाकुर था, छत्तीस जाति का था, और हमेशा खाने पीने का कंपटीशन करता था। तो जब कहीं कोई दही बेचने वाला आता था ना, तो दही पीने का कंपटीशन करता था। गुलाब जामुन वाला है तो गुलाब जामुन का कंपटीशन है। आप गुलाब जामुन चाहे एक खाए चाहे दस खाए, टेस्ट वही मिलेगा, सच ही नहीं सच, स्वाद नहीं मिलेगा। कि हर गुलाब जामुन का टेस्ट अलग अलग होगा, अगर गुलाब जामुन का टेस्ट वही होगा, तो जब एक से टेस्ट मिल गया है ना, तो भरने की क्या जरूरत है, लेकिन हमारी तृप्ति नहीं होती है ना। और इंसान क्या सोचती है, वो खाएगा भी पानी भरेगा भी, सीन देखना हो तुम्हारे देखिए जब हथियारता निकलती है रास्ते में जब समझता है तो कुछ औरतें हैं और कुछ आदमी तो भैट लेके जाते भरने के लिए सच्चाई भी सच्चाई खाएंगे भी भरेंगे भी चाहे वहां जाकर फेंकी दे भर देंगे लेकिन इतना संतुष्ट है तृप्ति नहीं है किसी किसी को कोई चिंता नहीं इसलिए भगवान कहते हैं कि हम तीन पद में हम क्या हो जाएंगे संतुष्ट हो जाएंगे बलि महाराज भगवान कहते हैं कि हमको जो तीन पद है हमें उतना ही चाहिए और इंसान को उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए जिसका भगवान के द्वारा उसको क्या किया है दिया हुआ है तभी संभव है जब हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कला सीखनी पड़ेगी तभी हम आन पाएंगे आगे चल करके बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा है ना आप सुनिएगा इसको भगवान आगे कृष्ण में ही बताएंगे जो माप समझाए कि चुप कि अगर मैं तीन पद से संतुष्ट नहीं होगा तो आप पूरे दिन का दे दो फिर भी संतुष्ट नहीं होगा राइट जैसा कि हम लोग अपने जगत देख रहे हैं कि आप भी संतुष्ट ही नहीं और के चक्कर में जो इकट्ठा किया हुआ है क्योंकि और करते करते मर जाता है जो इकट्ठा करके छोड़ के चला जाता है अरे जितना है उसका तो अपने जीवन में उसका क्या आनंद उठाना ऐसा नहीं करता हम तो जहां रहते हैं स्टाफ क्लास जीके 1-2 में वहां ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कोठियां हैं जहां पे कुत्ते बिल्ली और नौकर रहते हैं क्योंकि जब सेठ लोग उनको रहने का समय इकट्ठे होकर खाने का समय नहीं तभी आप बनाए किसके लिए हो अरबों रुपए करोड़ रुपए की कोठी किसके बन नौकरों के लिए अच्छा अच्छा तो बेचारे वो कुत्ते बिल्ली अपना आराम से रह रहे हैं सच्चाई नहीं सच तो क्या और बने और लगे संतुष्टि नहीं इसलिए हर इंसान इस संसार में सुखी नहीं सुख रहने के लिए उसे संतुष्ट होना पड़ेगा असंतुष्ट इंसान तभी रह सकता है जैसा भगवान कहते हैं जब तक उसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो इंद्रिय पर नियंत्रण अगर करेंगे असंतुष्ट होंगे तब आप क्या करें आनंद पाएंगे और आनंद के आधार एकमात्र भगवान है कैसे संतुष्ट किया जाए उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा जैसे हम भक्त लोग हैं खाते हैं भी लेकिन हम क्या करते हैं पहले भगवान को खिलाते हैं तो उनका प्रसाद पाते हैं ये इतना तो इंसान कर ही सकता है आज कल लोग इतना ही नहीं भगवान को भोग लगाते नहीं और फ्रिज में भरे रहेगा फल तो बर्फ लेकिन एक भी केला उसका दिल नहीं करता कि लड्डू को पास ना देते मंदिर में ना भोग नहीं लगा कोई रिश्तेदार आ गया खोल करके डायरेक्ट उसको खिला देगा लेकिन भगवान ताकते रह जाए देखते रह जाए क्या स्थिति फिर कहता भगवान हमारी कृपा नहीं करते आनंद तो हमें आनंद लेना आता है अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो भगवान कैसे संतुष्ट किया जाए प्रेम से और भाव से भगवान किससे प्रभावित होते हैं भावना से प्रेम से भगवान को अगर प्रेम से एक गिलास पानी तुलसी का पत्ता लेने तब भगवान आपसे क्या होंगे तृप्त हो जाए ये सबरी ने क्या किया बड़े प्रेम से भाव से झूठे बेर खिलाए भगवान बड़े प्रेम से खाए यही भगवान जब गए थे युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के घर तो दुर्योधन ने उनको 56 प्रकार का भोग लगा के दिया था भगवान नहीं खाए क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था भाव नहीं था भगवान किसके भूखे हैं प्रेम और भाव के अब विदुर के घर जब गए तब विदुरान ने क्या किया प्रेम से केले के छिलके खिलाए थे भगवान प्रेम से खा रहे थे तो भगवान किसके भूखे हैं प्रेम के और भाव के तो उस भाव से प्रेम से यदि आप भगवान को भोग लगाएंगे भगवान तृप्त हो जाएंगे जब भगवान तृप्त हो जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे तृप्त हो जाएंगे खाना ही है तो भगवान का भोग लगा के खाए, देखना ही है तो भगवान की सुंदरता देखे, सुनना है तो भगवान का नाम भगवान कथा सुन। इस तरह से अपने इंद्रियों को कृष्ण के प्रति क्या करना चाहिए, कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। तब क्या करें, आप संतुष्ट रहेंगे और फिर दूसरों को आनंद भी आप दीजिए। एक पास का संदर्भ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, भक्त आस भागवतम की, आस के आनंद की। हरे कृष्ण।